बच्चों की सही समाजी तरबियत, अक्सर हम बात करते हैं कि भाई बेटा आप जो है वो ठीक से बैठें या बड़ों का जो है एहतराम करें, ये सारी चीज़ें घर के अंदर खानदान के अंदर तक महदूद रह जाती हैं हमारी। ये समाजी तरबियत दरअसल है क्या?
देखें, मेरा जो नज़रिया है वो ये कि यानी बच्चा जब यानी शुरू में जिस वक्त दुनिया में आता है और उससे लेके और कई साल तक बाद के 3-4 साल तक उसका समाज जो होता है वो दरअसल उसका ख़ानदान होता है।
बिल्कुल
तो उसकी तरबियत के लिए यानी ख़ानदान में, अब आजकल तो जो फैशन है उसमें मियाँ बीवी रह रहे हैं खाली, तो एक बच्चा है तो उस माँ बाप को ज़्यादातर देखता है, और
बिल्कुल
इसके अलावा अगर वो किसी को देखता है तो सिर्फ थोड़े बहुत दोस्तों का आना जाना रहता है। पहले ज़माने में जब जॉइंट फैमिलीज़ का जब यानी ख़ानदान इकट्ठा रहते थे, साथ रहते, तो ये अब मुश्किल पेश नहीं आती थी कि अलग से समाजी तरबियत कैसे करें, क्योंकि खुद घर में एक समाज, छोटा सा समाज होता था।
बिल्कुल
उसमें बच्चे को पता होता था कि किससे किसके साथ कैसे बात करनी है, किससे बहुत ज़्यादा मुअद्दब रहना है, किससे उससे थोड़ा कम, कौन हमारे बराबर का है। अब का जो आज का जो ज़माना है, इसमें अगर मुख्तसर जो प्रोग्राम में वक्त भी बहुत कम होता है, तो मैं अर्ज़ करूँगी कि दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल अगर रखा जाए, उसकी मैं मिसालें दूंगी, तो बच्चे की तरबियत, समाजी तरबियत खुद ब खुद हो जाती है।
ठीक
देखिए, एक तो ये होता है जैसे सच बोलना है तो बच्चे के सामने आप झूठ नहीं बोलें, इस टाइप की चीज़ें जो आम सभी को पता होती हैं और सब लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चे के सामने ना करें, लेकिन बहरहाल हो ही जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं।
जी
मेन चीज़ जिसका, जो असल चीज़ जिसका मैं, मेरे जहन में जो रहता है कि हमारे यहाँ इस्लाम में दो चीज़ों पर बहुत जोर दिया गया है कि एक, गीबत ना करो, बहुत बड़ा गुनाह कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है,
बिल्कुल
और दूसरी चीज़ है कि हक़ुन नास का ख्याल रखना। दो चीज़ें
सही, दो
होती हैं।
चीज़ें।
हक़ुल्लाह का ये है कि आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, रोज़े नहीं रखे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ दूसरे कामों के काम ऐसे आपने किए हों कि खुदा उन सज़ाओं को माफ़ कर दे, उसके और आपके और उसके दरमियान है ये
नज़रअंदाज कर दूँ मैं।
हक़ुल्लाह।
ठीक है
हक़ुन नास जो है वो लोगों के और आपके दरमियान है, उसको वो भी नहीं माफ़ करेगा, खास बात ये होती है उसको वो माफ़ नहीं करेगा, हत्ता शहीदों तक के लिए है कि अगर उन पर हक़ुन नास है तो हक़ुन नास उनके घर वाले बाद में अदा करें, या अगर उसने खुद अदा नहीं किया तो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ सारे गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं वहाँ पर भी। तो हक़ुन, अब तो मैं पहले बात करूँगी गीबत की।
ठीक है
हम लोग क्या करते हैं कि लोगों के यहाँ घूमने के लिए गए तो हमने देखा कि बच्चा देखो ये कपड़े ठीक से पहनना और वहाँ ज़्यादा बात नहीं करना और चुप बैठना और देखो कोई शैतानी नहीं करना, ये सब बच्चे को समझा के ले जाते हैं। अपने हिसाब से हम ये समाजी तरबियत कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बच्चा वहाँ जाता है और जाके जो भी खाना पीना, उसे शैतानी करनी नहीं करनी, वो सब अपनी जगह पर है। वहाँ पर हम जब मिलते हैं लोगों से तो हम बड़ी एक दूसरे की तारीफें, अरे भाई कहाँ थी, और हम तो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान हो गए थे, और मतलब मिला करो और बराबर मिलें और देखो कितनी मोहब्बत बढ़ती
मुस्कुराते
है,
भी मिलते
और
हैं।
मुस्कु बहुत देर बड़ी अच्छी अच्छी बातें
बिल्कुल
होती हैं, सब कुछ है, बच्चा भी बड़ा, ये सारी बातें वालदैन की और रिश्तेदारों की आपस में सुन रहा होता है।
सही बिल्कुल
अगर हम किसी के यहाँ गए हैं, जब हम वहाँ से दरवाजे से बाहर निकले और वापस मतलब चलना शुरू किया, या अपनी गाड़ी में बैठे या बोलिया, देखा कैसी बातें कर रही थी,
बिल्कुल
देखा वो फलां साहब कैसे मिले, कपड़े तुमने देखे कैसे बात
कि वो
वो
खाने
पहने
की
हुए
चीजों
थे,
सामने रखी थी।
और जो चीजें रखी थी वो। होता क्या है कि जो बच्चा 3 साल का, 4 साल का, हत्ता 2-2.5 साल का, 2.5 साल का बच्चा जो अब तक देख रहा था कि उसकी खाला पुपी जो भी रिश्ता था, या जो भी बाकी मामू चचा जो भी रिश्ते वाले थे, उनसे जब आपने बात की तो किस कदर मोहब्बत की, और बच्चा बहुत खुश हो रहा था कि
बिल्कुल
मतलब उसे मोहब्बत हो रही थी उन लोगों से। और जब हम बाहर निकले तो बच्चे को हमने बिल्कुल जिसे कहते हैं चकरा दिया, कंफ्यूज कर दिया।
बिल्कुल
अब बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये सही है तो वो क्या है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक नफरत का एहसास जागता है।
बिल्कुल
तो हम बजाय इसके कि सही तरबियत समाजी कर सकें, हम उसमें नफरत फैलाते हैं, और नफरत जिस बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है, चाहे वो माँ बाप की इस बात से हो, चाहे उन लोगों के लिए उसके मनफी ख्याल हों, दोनों चीज़ें बहुत गलत होती।
बच्चा जब नफरत में मुब्तला हो जाए, वो एहसास नफरत का जब उसके अंदर आए, तो वो फिर कुछ नहीं समझ पाता कि अब मैंने क्या करना और कहाँ जाना है, और अपने वालदैन को वो दो पहलू से देख रहा है,
बिल्कुल
एक जगह मुस्बत एक जगह मनफी।
दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि जैसे अब हमारे घर कोई मेहमान आया, तो कई बार ये होता है जैसे बच्चों के, अब हमारे अच्छे कीमती खिलौने हैं ये हैं, तो हम बच्चे से या तो ये कहेंगे कि ये खिलौने अलग कर दो, वो जो बच्चा आ रहा है वो बहुत शैतान है, वो तोड़ देगा, تو بچے میں وہ فوراً یہ نہیں ہے, بچہ اس کا دوست بھی وہ بنا بھی نہیں ہے, ابھی اس نے آیا بھی نہیں, وہ اگر جان پہچان بھی ہے اور دوستی بھی ہے تو وہ بچے میں ایک فوراً ایک دفاعی پوزیشن وہ لے لے گا, وہ کھلونے کی. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بچے دوسرے بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں دیں گے, امی نے کہا ہے کہ تم توڑ دیتے ہو. ہونا یہ چاہیے کہ بچے سے یہ کہا جائے کہ مطلب وہ جو بچہ آتا ہے نا, اس سے کئی بار ہاتھ سے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں کھلونے. یہ تو نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں نہیں نہیں سب دے دو وہ توڑ دے, انسانی فطرت ہے, ہر ایک ہر روز نہیں خرید سکتا کھلونے. آپ بچے سے یہ کہیں کہ دیکھو اس کے ہاتھ سے کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں کئی بار, تو فلاں فلاں کھلونا نکالو یا آپ کچھ کھلونے نکال کے دے دیں, اس سے کچھ نہ کہیں بچے سے, وہ کھیلے. اگر کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو اس مہمان کے جانے کے بعد جس کے ساتھ بچہ اتنی دیر کھیلا ہے, اگر بچہ شکایت بھی کرے تو کہیں نہیں اس سے غلطی ہو گئی نا, تم اب کسی کے گھر جانا تو یہ مت کرنا, یہ غلطی نہ کرنا, ہاں تاکہ تمہارے لیے سبق. دیکھو اس سے غلطی ہو گئی, غلطی سے ٹوٹ گیا, اس غلطی کا کہنے میں اور ہاں ہاں وہ تو بڑا شیطان ہے, وہ تو بڑا بدتمیز ہے, ماں تو کنٹرول نہیں کرتی, اس میں بہت فرق ہے. اور یہ آپ نے جو یہ برائی کی اس سے بچے کی دوستی میں فرق آ گیا, اس سے بچے میں اندرونی ایک نفرت کا بیج بو گیا. اب جب اگلی بار یہ اس کے گھر جائے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بچے ایسا مطلب یعنی جواب دیتے ہیں کہ وہ اس کا کھلونا ہم توڑیں گے,
جان بوجھ کر کرتے ہیں, پھر
جان بوجھ کر کرتے ہیں. کئی بار ان سے کہہ دیتے ہیں, اس سے بڑوں کے تعلقات پہ بہت اثر پڑ جاتا ہے, اور پھر بچے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے سامنے کچھ اور بات کہنی ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے کوئی اور بات کہنی ہے. تو یہ غیبت جو ہے جو ہم یہ کرتے ہیں, یہ ہمارے بچوں پر بہت زیادہ منفی اثرات ڈالتی ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ دوہری شخصیت کے مالک ہو جاتے ہیں, یعنی ان کی شخصیت دو الگ طرح کی ہو جاتی ہے, اور اسی زمانے سے وہ اس گناہ میں مبتلا ہونے لگتے ہیں. اور جب تک بچہ معصوم ہے اس وقت تک جو وہ اس کے گناہ میں یا جو بیج ہم نے ڈالے اس کے گناہ میں ہم بھی ہم شامل ہوتے ہیں, اس کو تو ابھی اثر نہیں پڑ رہا کیونکہ ہم تربیت قصوروار ہم ہوتے ہیں. تو ایک یہ بڑی چیز ہے کہ ہم مہمان کے آنے کے بعد یا جب کہیں خود مہمان جائیں تو بچوں کو ایسا وہ کریں کہ اگر ہمیں مان لیجیے کہ کسی کے خلاف کوئی بات کہنی ہے, ہمیں پسند نہیں آئی کوئی چیز, تو ہم کوشش کریں بچوں کے سامنے وہ بات کبھی نہ کہیں, بچوں کے سامنے بالکل نہ کہیں, ورنہ اس کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے گی, وہ کہے یا نہ کہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی اور اس کی شخصیت پر اس کا اثر پڑے گا. نتیجہ یہ کہ اس کی سماجی زندگی جب شروع ہو رہی ہے تو اسی وقت وہ سماج سے ایک دوری اور ایک نفرت کا احساس کرنے لگے گا, اور نفرت کا جب احساس شدید بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ جو آج کل اتنی دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. ان بچوں کو نفرتیں سکھائی گئیں, اور ایسے بھی سماج ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں, تو وہاں کے اوپر آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے اس لیے تم اس سے یوں ملو, نہیں, آپ اس سے بالکل انسانی حیثیت سے بالکل اچھی طرح ملیں گے, اور گھر میں بھی بچے سے الرٹ ہونے کو نہیں کہیں گے.
بچوں کی آپ سماجی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو خود بچوں کو سماج میں لے کر جائیں, یعنی مثال کے طور پر پارکس یا باہر گھر سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پر والدین یہ کام کرتے ہیں, جب بچے لائن میں کھڑے ہیں جھولا جھولنے کے لیے تو جناب والدین تھوڑا سا آگے چلے جاؤ یا دھکا دے کے کسی طرح سے بچے کو آگے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کیسی سماجی تربیت ہے؟
بھائی دیکھیں, سماجی تربیت میں آپ کی اس بات کو ابھی جواب دوں گی اس کا, مطلب آپ بچے کو ہر جگہ آپ کی جو مذہبی رسومات ہیں, مجلس ہو, میلاد ہو, کوئی اور ایسی تقریب ہو, دعا کی کوئی چیز خوشی ہو, وہ اس میں ضرور لے جائیں. اسی طرح جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے, 4-5 سال کا ہو جائے, تو خدا نخواستہ کہیں غم کی تقریب ہو اس میں بھی لے جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈانٹ و پھٹکار اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں کہ بچہ آپ کا پریشان ہو جاتا ہے, کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے پرس میں رکھیں, تاکہ بچے کو اس ذہن بٹا سکیں, کوئی چھوٹی سی کتاب, کوئی چھوٹی سی ایسی چیز, کلر پینسلز رکھ لیں. لیکن جہاں پر آپ جیسے مذہبی رسومات کے اس میں, وہاں پر آپ خود پورا وقت دیں وہ سننے میں. بچہ اگر پریشان ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا لے کے باہر جا سکتی ہیں آپ, تاکہ وہ اکتائے نہیں, پریشان نہیں ہو وہاں, لیکن اس کی تربیت کے لیے کہ اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے ان محفلوں میں, اس کی تربیت آپ کے بیٹھنے کے انداز سے ظاہر ہو,
آپ اس کے لیے رول ماڈل
ہیں. رول ماڈل ہیں, ایک کام تو آپ یہ کریں ضرور اس کے لیے کہ اسے ایسی محفلوں میں لے جائیں. وہ آج کل وہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور آج کل بیکٹیریا پھیلا ہوا ہے, یہ جو سب چیزیں چلتی ہیں, یہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ جب میں نے بچے کو بالکل گھر میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ وہ ہر طرح سے محفوظ رہے, تو وہ آپ اس کے ذہن کو کھلنے سے اور بڑھنے سے روک رہے ہو.
بالکل, उसकी नशोनुमा
रोक रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह बच्चों को आप पार्क ले जाएं, पार्क ले गए, नुमाइश ले गए, कोई बच्चों की फिल्म है वहां कहीं ले गए, उन जगहों पर जब बच्चा जाता है तो आप उसका कैसा सलूक है साथियों के साथ उस पर नजर रखें। बच्चा लाइन में खड़ा है, अब वो घबरा रहे हो बार बार से, वो चाह रहा है माँ से चिपका रहे, अब बाप से चिपका रहे, नहीं तुम खड़े हो लाइन में, तुम भी खड़े हो, लेकिन दूसरा कोई बच्चा धक्का दे रहा है, उस बच्चे को आप या समझा दें या उसके माँ बाप से कह दें इसको रोक लें, ठीक है ना, इस बच्चे से कहें वो गलती कर रहा है, यानी इस बच्चे को ये पता हो कि धक्का देना या आगे बढ़ना गलती है। एक और बहुत चीज होती है कि घर में, अक्सर घरों में देखा जाता है कि वो घर की कोई चीज बच्चे नहीं तोड़ते, क्यों, क्योंकि उनकी या मार पिटाई हो जाती है, डांट पड़ जाती है, बहुत सख्त सजा दी जाती है,
अम्मी की चप्पल सर पर रहती है,
जो भी, बहरहाल इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। और जब किसी दूसरे के घर जाते हैं तो फिर माँ बाप खुद बातों में लग गया, या बहरहाल कोई बात नहीं है। इसी तरह जब पार्क वगैरह में ऐसी जगहों पे जाते हैं तो ये किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, ये तो गवर्नमेंट का है। नतीजा ये है कि बच्चा कोई चीज तोड़े, कोई फोड़े, कहीं निशान बना दे, कहीं
फूल फूटे जो होते हैं
उनको नोच ले, तो वो सारी, ये भी हक़ नाश है।
बिल्कुल,
ये सिर्फ आपके बच्चे, आप उसको समझाएं, और ऐसा नहीं है आप कहें कि बच्चा नहीं समझता, तो उसकी किसी एक चीज पर अगर बच्चा इस वक्त तोड़ने पे लगा हुआ है तो उसी वक्त आप कोई दूसरा खिलौना, कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा गेम शुरू करके बच्चे का जहन बटा दें। बच्चे का जहन बट जाएगा तो वो ऐसी शरारतें नहीं करेगा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, खराबकारी वाली चीजें काम नहीं करेगा, और इस तरह वो धीरे धीरे उसको बार बार कहें कि देखो ये सीटें सिर्फ हमारी थोड़ी हैं, ये फूल सिर्फ हमारे थोड़ी हैं, ये सारे लोगों के हैं, तो ये जुमले आपके थोड़े से जुमले हो, उसको दो घंटे नसीहत की जरूरत नहीं है, आपका खुद का जो अंदाज होगा किसी पार्क में, किसी भी अवामी जगह पर, उमूमी जगह पर जाने के बाद, वो बच्चा उसको देखेगा कि हमारे माँ बाप पेड़ पौधों का, फूल बूटों का कितना ख्याल कर रहे हैं, कितना सीटों का, कितना इसका, और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर दूसरे बच्चे ये कह रहे हैं तो आप ये मत कहिए वो बहुत शैतान है, वो बदतमीज है, कि नहीं वो गलती से कर रहे हैं, उसको ध्यान नहीं था, या उसको गलती से कर रहा है, नहीं अगर अच्छा उसे ये नहीं करना चाहिए, ये कहें उसको, शरीर और ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल करें दूसरे बच्चे के लिए कि ये खुद ब खुद सीखे और उसके बाद उसको किसी दूसरे इस्तेमाल करे, या उस बच्चे के लिए, या ऐसी चीजों के लिए उसमें नफरत पैदा हो, इसमें एक सबक आए, नफरत शामिल ना हो, इसका बहुत ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
माँ बाप ये कहते हैं कि भाई हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बच्चों की तरबियत भी ठीक तरह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे जो है बाहर से सीख कर आ रहे हैं। अब बाहर से मेरा मतलब है यहाँ पर प्री नर्सरी की तरफ इशारा किया गया है, स्कूल भी है और मुख्तलिफ जगह है, तो क्या सिर्फ वालदैन जिम्मेदार हैं या नहीं, बाहर माशरे में और भी लोग जिम्मेदार हैं समाजी तरबियत के बच्चे।
देखिए अगर सारे वालदैन इस बात का ख्याल रखेंगे तो बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में बेहतर चीजें उनके अंदर दाखिल होंगी। स्कूल में बच्चों का तो खासतौर पर जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये होता है कि जो स्कूल टीचर उनकी होती है, नर्सरी में जो टीचर होती है, वो उसकी बातें उनके लिए माज़ल्ला आयतें कुरानी होती हैं, वो इतना उसको कबूल करते हैं, वो करते हैं, तो ऐसी जगहों पर टीचर्स पर खास उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन टीचर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो बच्चों को किस शक्ल में कंट्रोल करें, जो बच्चे ज्यादा शैतान हैं, यानी फितरी तौर पर जो ज्यादा शैतान है, उनके बच्चों का बेहतरीन इलाज ये होता है कि वो जिस शैतानी में लगे हुए हैं उससे आप उन्हें मना ना करें कि ये ना करो, बल्कि उसी वक्त उनका जहन किसी और चीज की तरफ मोड़ दें, आओ देखो ये कैसे हो रहा है।
सही,
जब आप कोई दूसरा खेल, दूसरी कोई चीज, दूसरी कोई मतलब टेक्निकल कोई चीज, दिलचस्पी उनके लिए कोई दूसरी करेंगे तो उसके लिए आएंगे जरूर, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद फिर उस काम के लिए जाएं, लेकिन ये कि उसको आप बच्चे की ट्रेनिंग के लिए, बच्चे की समाजी तरबियत के लिए उसके जहन का बटाना जरूरी होता है, जहन बट जाए उसका। दूसरे बच्चों के साथ शैतानी, कुछ बच्चे ऐसे दब्बू फितरत के होते हैं, दब्बू कहलाते हैं कि जो डर जाते हैं, जो वो उनको, और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा तेज हमलावर होते हैं, और यानी तेज होते हैं वो, इनके इनसे बचाने के लिए एक दूसरे के इससे कहना चाहिए, उससे जो मतलब हमला कर रहा है, जो शैतान है ज्यादा, उसको इस तरह करके समझाना चाहिए कि देखो ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, तुम ये करोगे ये चोट लगेगी तो इससे तुम्हें ये नुकसान पहुंच सकता है, फिर वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा, फिर दूसरे बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, फिर दूसरे बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, यानी ये हर एक में इंसान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसमें एक फितरत ये जरूर होती है कि वो चाहता है उसे पसंद किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए, उसे आप यानी टीचर हो या घर वाले हो उसे प्यार करें, यानी माँ का, माँ और बाप का प्यार करना बच्चे को, ये खुद तरबियत का हिस्सा होता है। तो जब अब हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, اگر تم نے یہ کیا. آپ دیکھیں اس کا نتیجہ بڑا اچھا ظاہر ہوگا جس وقت یہ کیا جائے گا. اور بچے کو اس طرح اسکول میں اگر ٹیچر, یہ جو پری نرسری والے جو بچے ہوتے ہیں, ان کو اگر ٹیچر یہ کرے گی تو اس پر بچے کا بہت, بچے پر بہت اثر پڑتا ہے. اور جو بچہ دبو, اس سے کہا جائے تم کیوں ڈرتے ہو, جاؤ تم بھی کھیلو, جاؤ تم بھی یہ کرو, تم کر سکتے ہو. یہ ہمت اگر بچے کو دلائی جائے تو جو غلط چیزیں وہ سیکھ کے آتا ہے وہ یہ نہیں, اچھا یہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ٹیچر تو یہ بات کہہ سکتی ہے, بتا رہا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, دیکھو یہ بات غلط ہوتی ہے, اس سے اس بچے کو چوٹ لگ گئی ہے. تو یہ چیزیں اس شکل میں اگر دی جائیں گی بجائے بچے کی زیادہ نصیحت کرنے کے اور اسے اس پر دباؤ ڈالنے کے یا مار پیٹ کرنے کے, تو اس کے سماجی یعنی جو قوانین ہیں, جو جسے دوسرے الفاظ میں کہ وہی حق الناس جو ہے, بچے کو وہ ادا کرنا آ جائے گا. آپ نمائشوں میں لے جائیں, آپ پارکوں میں لے جائیں, وہاں پر چیزوں کی حفاظت اور دوسرے لوگوں کی حفاظت یا ان کی چیزوں کی حفاظت دونوں آپ خود کریں, بچہ دیکھے گا اور وہ خود یہ کام کرنا شروع کر دے گا.
اگر تعلقات بھی بنیں گے, اس کس طرح
تعلقات بھی بنیں گے
جو آج کل نہیں ہے.
ہاں بالکل. تو اس طرح سے بچے کی جو سماجی تربیت کی جاتی ہے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور پھر وہی بات کہ غیبت سے بہت زیادہ آپ کو, آپ کے تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے اور بچے کی شخصیت کو بہت پہنچتا ہے. اس کا بہت خیال رکھیں اور اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ حق الناس, اور بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ دیکھو اللہ میاں نے کچھ یہ دیا ہوا ہے اور تمہیں دوستی کرنی ہے تو پھر اللہ تم سے بہت خوش ہوگا. اس بیچ میں اللہ کو بھی انوالو کریں, اللہ کو بھی شامل کریں. یہ لفظ جب آپ دن میں دو چار بار دہرائیں گے تو بچہ خود بخود خدا سے دوستی پیدا کر لے.